نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اب اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ کا ذکر آ رہا ہے. خوبصورت ترین آیت ہے یہ، اور یہ آیت اگر کسی نے، اگر آپ کو یہ ایڈمنز آج کچھ اور بیکاریوں کی آواز میں سنا سکیں، یہ آیت اگر کوئی خوبصورت آواز میں پڑھے نا تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے. یہ اتنی پیاری آیت ہے، یعنی جب بھی میں اس کو سنتی ہوں نا، کہیں کوئی اچھی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو، یہ ایسے لگتا ہے دل پہ اتر رہی ہے. یہ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہاں پہ آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے ایک، یعنی الفاظ ڈفرنٹ ہے. ان الذین آمنوا نہیں کہا گیا، ان الذین اسلموا نہیں کہا گیا، جو لوگ اسلام لے آئے، جو لوگ ایمان لے گئے، نہیں، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہمارا رب اللہ ہے. آپ صرف اس کو مکی کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، وہاں پہ یہ بات کہہ دینا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میرا رب اللہ ہے، یہ سمجھنے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی. اس کے بعد اس بندے کی تو زندگی ہی اندھیر ہو جاتی تھی، یعنی اتنا اس کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا، اتنا اس کے اوپر ظلم کرتے تھے. یہ تو ایسے تھا کہ دعوت دینا، ظلم کو دعوت دینا تھا. گھر والے اس کو چھوڑ دیتے تھے، گھر والوں کی طرف سے ہی سب سے زیادہ ٹارچر ہوتا تھا. چاہے کوئی آزاد ہے، غلام بیچارے کی تو بالکل ہی کوئی نہیں حیثیت اس معاشرے میں تھی، لیکن آزاد کے ساتھ بھی وہ حال کرتے تھے ان کے گھر والے ہی، کہ جن کی مثالیں آپ پڑھتے ہیں کہ جو مصائب صحابہ کرام نے سہے. اٹ واز ناٹ ایزی، پہلے اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں. اور اس کے بعد ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے، ربنا اللہ، کہ اس نے علل اعلان کہہ دیا، میرا رب بس اللہ، اب جو مرضی ہو جائے، ہوتا ہے تو ہوتے آئے، جس نے جو کرنا ہے نا میرے ساتھ کرے گئے. اور یہ بھی پتہ چلا اس سے، ڈکلیریشن، منہ سے بولنا. یہ نہیں کہ ہمارے تو دل کے اندر تو ایمان ہے بس، ٹھیک ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہمارا ایمان ہے، نہیں، منہ سے بول کے بتاؤ. اس لیے کہ منہ سے بول کے بتانے سے پتا چلے گا کہ واقعی تم اس کے اوپر کتنے یقین رکھتے ہو کہ اب تمہیں پرواہ نہیں رہی ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت کرتا ہے، جو مجھے پالتا ہے، میری پرورش کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہے بس. یہ بات کتنی بڑی ہے، آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچیں، یہ کتنی بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. تو میرا تو سب کچھ اللہ ہے. تو اب کیا، جو بندہ ایسا کہہ رہا ہوگا وہ بے نیاز نہیں ہو جائے گا کہ مجھے نہیں اور کسی کی پرواہ، مجھے نہیں کسی کا ڈر، میرا رب تو اللہ ہے. لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر کیا کرے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ثم استقاموا، یہ ہے مشکل ترین بات. پھر جم گیا اس کے اوپر، پھر متزلزل نہیں ہوا. پھر یہ نہیں کہ آج جذبات میں آ کے تو کہہ دیا ربنا اللہ، اور کل کو جب کوئی آندھی طوفان آئے، کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی مسئلے آئے، تو پھر گئے، یا پھر اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کر لی. یہ ایسا نہیں ہے، قائم ہو گیا، جم گیا. استقامو کیا آتا ہے؟ کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا، کہ اس کے اندر ذرا بھی ٹیڑھ نہ ہو، کبھی ادھر کو جا رہی ہے، کبھی ادھر کو جا رہی ہے، ایسی نہ ہو، فرم ہو، فرم. ٹھیک ہے، ایک بات یہ سمجھ آ گئی. یہ اس کے بہت زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اس کے اوپر تو اتنی تفاسیر ہوئی نہیں ہے، میں تو اس کو پورا 3 گھنٹے بھی اس آیت کو کرتی رہوں تو کام ہے اس کے لیے. تو اس لیے ذرا یہ آیت اتنی خوبصورت ہے نا، کہ اس کی ڈیو ریسپیکٹ اس کو دینی چاہیے، ہم متوجہ ہوں کم از کم، حق تو نہیں ادا ہو سکتا. تو اور استقامت کیا ہے؟ عملی ثبوت دینا، عمل سے بتانا کہ واقعی جب میں نے کہا ہے ربنا اللہ تو मेरा अमल भी वैसा है या नहीं। आज हमें पूछे ना तो हम कहते हैं अल्लाह की खातिर हम जान भी देने को तैयार हैं, हम ऐसे करने को तैयार हैं। वक्त आ जाए तो मैं तो पता नहीं क्या साबित कर दूंगी कि पता नहीं हम क्या क्या जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। जरा सा अल्लाह ने झटका दिया, कोई ऐसा मसला आ गया, अल्लाह माफ करे, कोई बीमारी, कोई और ऐसी मुसीबत आ गई, कोई घर के ऊपर कोई ऐसा आजमाइश आ गई, फिर देखो वो याद ही नहीं है कि मेरा रब अल्लाह। सब गिव अप करने को तैयार है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, अमल में क्या आया? इसका मतलब अमल तो सबूत नहीं दे रहा। इस्तकामत में ये अमल से सबूत दो, प्रूव इट। और हम सूरह अनकबूत में पढ़ चुके हैं, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी नहीं है, अल्लाह तुम्हें आजमा के देखेगा। तो इसका मतलब आजमाइश आएगी, पता चलेगा तुम्हारा अमल क्या है। इस दावे का इम्तिहान अल्लाह लेगा, साबित करो। जो साबित करके दिखाए हमारा रब अल्लाह है, वाकई वो ही इस्तकामत वाला है। ये नहीं कि कॉल कुछ अमल कुछ। तो इस्तकामत में क्या आ गया? नंबर वन, ये इंसान वाकई अमली तौर पे साबित करके दिखाए, अल्लाह के अहकामात पे चल के दिखाए, इखलास के साथ और जो नबी का तरीका उसके मुताबिक। ठीक है, तो इस्तकामत में इखलास होना जरूरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना जरूरी है। नंबर टू बात क्या, इस्तकामत वक्ती अमल नहीं है, हमेशगी का है। आज कर लिया जज्बात में आके, कुछ अरसे बाद छोड़ दिया, ये इस्तकामत नहीं होती। जैसे हम कहते ना अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए, जब हमारी यही दुआ होती है जब कोई रजिस्टर करता है, अल्लाह आपको इस्तकामत दे। क्योंकि अक्सर लोग आज जी बड़ा 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 अच्छा दर्स हुआ, फॉर्म भी फिल कर दिया, उसके बाद पूछो तो दो लेसन के बाद कहाँ गायब है, कुछ पता ही नहीं। इस्तकामत नहीं है आज हमारे अंदर। आप देखें कितने लोग शुरू करते हैं कोर्स को और ग्रेजुएट कितने करते हैं, उसी से आपको पता चल जाए हमारी इस्तकामत की हालत क्या है। दीन के मामले में हमारी इस्तकामत नहीं है, बाकी चीजों में इस्तकामत है। जॉब करते हैं तो टिक के करते हैं, घर के कामों में भी टिक के करते हैं, लेकिन जहां पे दीन का मामला आ जाता है वहां पे, क्योंकि जिसकी जितनी अहमियत होगी उतनी इस्तकामत होगी ना। तो आज अगर कहीं दर्स सुन लिया तो बस इतना जोश आ गया कि बस अल्लाह को ऐसा नहीं चाहिए कि आज इतने जोशीले तो बस पता नहीं क्या कर देंगे, कल को क्या है, सारा जोश झाग की तरह बैठ गया, कुछ भी नहीं है। तो कुछ अरसे की नेकियां नहीं चाहिए, सारी जिंदगी की चाहिए अल्लाह को फरमा बरदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत की तिलावत फरमाई तो फरमाया, बहुत से लोगों ने ये बात कही कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन फिर अक्सर लोगों ने अपने अमल से इसका इनकार कर दिया। ये जो बात अभी हुई है ना कि अमल से साबित करके दिखाना है और सारी जिंदगी साबित करके दिखाना है, और फरमाया जो इसी पर मर गया वो है जो इस्तकामत इख्तियार करने वाला है। तो हमारा कब ये इम्तिहान खत्म होगा, रबुन अल्लाह का इम्तिहान कब खत्म होगा? जब मरेंगे इस पे, जब मौत इसी पे आएगी। ऐसे नहीं है कि आज कहा और कल कुछ, कल कहा तो परसों कुछ और, दो दिन चले फिर चार दिन फिर रुक गए, फिर और दो दिन चले, फिर अब हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, नहीं, बस चलते ही चले गए। आप देखते नहीं सहाबा की जिंदगी, वो चलते ही चले गए जब तक मौत नहीं आ गई। आप देखते हैं उन्होंने कैसे साबित किया इस्तकामत क्या होती है, कैसे साबित किया हजरत बिलाल ने, हजरत सुमैया ने, ऐसे साबित किया। तो अल्लाह ने ये देखना है कि मौत किस हालत में आई है, ये नहीं देखना कि वंस अपॉन अ टाइम उसकी जिंदगी में एक फेज आया था जिसमें वो नेक हो गई थी, जिसमें उसने बड़ी फरमाबरदारी की, फिर वो पलट गई। आप देखते हैं बाज़ लोग कुरान की तरफ आते हैं, अल्लाह माफ करे, कुरान की तरफ आते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, जिंदगी तेजी से बदलती है, चेंज आने लगता है, हालत बदल गई, बच्चों का हाल भी बदल गया, घर भी बदल गए, कहां बाल खुले घूमती थी लेकर कहां पे हिजाब भी आ गया, अबाया भी आ गया, नकाब भी आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ मजबूरियां आ गई, कुछ मसले आ गए, कुछ ये आ गया, कुछ अपनी जो पिछली कंपनी थी उसका दबाव आ गया, और कुरान से आहिस्ता आहिस्ता दूरी होने शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ, जो हालत बदली थी वो वापस पलट गए, जहां से चले थे वहीं लौटने लगे, पहले नकाब उतरा, फिर अबाया उतरा, फिर हिजाब भी ढीला होने लगा। उनको शैतान ने ये सुझा दिया था, एक दफा कुरान तो पढ़ लिया ना, बस फरवत पढ़ने की क्या जरूरत है, एक दफा कोर्स कर नहीं लिया तुमने, तो नहीं, ये उम्र भर का सफर है, इसमें अल्लाह ने देखना कौन जम गया इस रास्ते पर, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, झक्कड़ चले, अपनी जगह से नहीं हिले। देखिए ना, आप मुझे ये बताएं, आप अपनी किसी को फ्रेंड कहती हैं, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिस वक्त कोई मुश्किल वक्त आए तो वो मिले ही ना, वो कहे मैं तो बिजी बहुत, तो आप कहेंगे मैंने ऐसी फ्रेंड को क्या करना। अल्लाह ताला ने देखना है कि ये आंधी तूफान में जमे कि नहीं जमे, ये आंधी तूफान के अंदर खड़े रहे या नहीं खड़े रहे। जो लोग उस वक्त नहीं चल सके तो फिर उनका क्या है, वो कैसे औलिया अल्लाह हो सकते हैं, वो कैसे अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं। ऐसे ईमान की कोई अहमियत नहीं है, ये बस जिस वक्त अच्छे हालात है उस वक्त तो बस बड़े अच्छे हैं, जिस वक्त हालात जरा मसले हुए, जरा अल्लाह ने हिलाया, किसी इम्तिहान में डाला, जरा प्रेशर आया, जरा लोगों ने बातें बनाने शुरू कर दी, जरा लोग मजाक करने शुरू हो गए, या दोस्तें साथ छोड़ने शुरू हो गई, हमने नहीं, अब तुम तो भाई बहुत चेंज हो गई हो, अब नहीं हम तो, अब वो उन्होंने अपनी पार्टियों पे हमें बुलाना शुरू कर दिया, पहले हमारे बगैर कोई पार्टी होती नहीं थी, अब वो बुलाती ही नहीं है, फिर उसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं है, सारा खानदान एक जैसा है और मैं अलग से हूं, तो फिर ये नहीं मेरे से हो सकता। तो फिर हाँ, जो 4 दिन किया था वो भी कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि जब इस्तकामत ना हो, मुझे बताएं किसी चीज में भी आप लोग उठा ले, मसलन है आप मिसाल के तौर पे आप खाना बनाती हैं, आप खाने में आपके पास इस्तकामत नहीं है, मसलन आप खाने को आधा बनाया और अब मैं बोर हो गई हूँ, अब ऐसे ही नहीं है, अब ऐसे नहीं, अब तो मैं थक गई हूँ, वहीं पर छोड़ के आप चली जाती, वो खाना खाने के काबिल होगा नहीं होगा, किसी काम का नहीं, वो बेकार है, आधा कच्चा आधा पक्का, जब तक उसको फुल फ्लेज एंड तक ना पहुंचाएं, उस वक्त तक उसको उसका कोई यूजेज नहीं है। दुनिया की बातों में हमें ये बात समझ आती है ना, तो दीन में भी जब तक मरते दम तक इंसान इसके ऊपर चल के ना दिखाए, इस पे कायम रह के ना दिखाए, उस वक्त तक उसका कोई ईमान नहीं है। बाद लोग पूरी जिंदगी ईमान पे रहते, एंड पे आके वो पलट जाते, 70 साल इबादत करते एंड में आके कुछ और हो जाते। तो ये वो लोग हैं जो चलते रहते हैं, चाहे कोई मजबूरी आ गई है, चाहे कोई रास्ते में कोई रिश्ते उसके पैर की बेड़ियां बन रहे हैं, चाहे इस रास्ते के अंदर कोई ऐसे रुकावटें डाल रहा है, अब शोहर खुश नहीं है, अब माँ बाप ताने दे रहे हैं, तुम तो भले अच्छी बली थी, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, अब बच्चे भी कुछ बातें बनाने लग गए हैं, अब जो दोस्त है बाप है वो भी नहीं पसंद कर रहे। तो ये जब सारी इतनी सारी ऑपोजिशन होती है, उसमें कोई इंसान खड़ा रहता है या गिर जाता है, इस चीज का इम्तिहान है, यही इस्तकामत है कि वो तब भी खड़ा रहे। उसका ईमान पहाड़ों जैसा होना चाहिए, जिस पर हवाएं आती हैं ना, देखिए कितने तूफान चलते हैं, पहाड़ तो नहीं अपनी जगह से हिलते, वहीं खड़े रहते हैं, आवाज लगती रहती है, हवाएं दम तोड़ जाती हैं, पहाड़ नहीं हिलता। लेकिन जो कमजोर कमजोर पौधे होते हैं उनका क्या हाल होता है, वो बस जरा सा झक्कड़ चला तो वो गिर के वो जमीन पर पड़े होते हैं। अल्लाह को ऐसा नहीं ईमान चाहिए, ये तो ऐसे ही है कि बस जैसे आपने दूध के नीचे आग जलाई, वो एक उबाल सा आया, ऐसे लग रहा है कि जब दूध निकल गए तो बाहर सारा गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो ही आप फ्लेम बंद करते हैं तो सारा नीचे चला जाता है, झाग बैठ जाती है और लगता है कि कभी इसमें कोई उबाल आया ही नहीं था। अब इंसान नया नया दीन की तरफ आता है, कुरान भी पढ़ता है, ये तो एक समझ में वो हीट अप होता है, वो जोश आता है, ऐसे लगता है पता नहीं कहां तक पहुंचेगा, कुरान से दूर जाने लगता है सारा जोश खत्म, सब आपने वो आग बंद कर दी खत्म, इसी तरह कुरान से दूर हुए खत्म, इस्तकामत ही नहीं रहती, इस्तकामत देने वाला भी ये कुरान है। तो ये मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है, ये आप ये 2 पारे पढ़ के 4 पारे पढ़ के भाग जाना, उसके बाद अच्छा आप नया कोर्स शुरू होगा ना तब हम आएंगे, तो वो नया कोर्स भी शुरू हो जाए, फिर उसके अंदर 2-4 पारे अब 6 कर लिए तो उसके बाद फिर कोई मजबूरी आ गई, नहीं नहीं अब नहीं हम कर सकते, अब हम और नया कोर्स आएगा ना, जब नया कोर्स स्टार्ट करेंगे ना आप तब हमें बता देना। ये कौन सी तरीका होता है पढ़ने का, ये कमी है हमारे अंदर, इसी चीज को हमने फिक्स करना है, इस्तकामत के बगैर कुछ नहीं है, कि मेरे घर में कुछ भी हालात हो, कोई भी ऐसी चीज हो गई, कभी मेहमान आ गए हैं, कभी शादी है, कभी कोई गमी है, कभी कोई और चीज है, उसमें भी मैं साबित कदम रहूं, चलती रहूं, इसी तरह नॉट ओनली दिस के कोई घर के घरेलू हालात होते हैं, बाज दफा यानी जो जिसको आप कहेंगे कि हुकूमतों की तरफ से मुल्कों में ऐसी कवानीन नाफिज हो जाते हैं या ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं जो इक्तदार वाले हैं उनकी तरफ से कोई सख्तियां आ जाती हैं कि लोग भाग जाते हैं। ये भी इस्तकामत की कमी है। यानी आपने खबरों में कोई बात सुन ली, कोई वाकया सुन लिया, जी इस्लाम मुसलमान को सताया गया, अब क्या हो गया, सताया गया, किसी का हिजाब खींच दिया, जी तुम्हें पता चला वो हिजाब खींच दिया वहां पे, लो जी अब से तो हमने हिजाब लेना ही नहीं, किसी को ना पता चले हम मुसलमान हैं। अगर पता चल गया तो कहीं ये मसला ना मेरे ऊपर आ जाए, तो तुम्हें तो डिक्लेयर करना है रब्बुन अल्लाह, लोग देखे तो उनको पता चल जाए इसका रब अल्लाह है, ये एक अल्लाह को मानने वाली है, ये पता चलना चाहिए। हम इसको छुपाते हैं, किसी को पता ना चले। मर्द छुपाते हैं, कहीं दाढ़ी रख ली तो लोगों को पता चल जाएगा मुसलमान है, औरतें छुपाती हैं हिजाब ले लिया तो लोगों को पता चल जाएगा मुसलमान है। सबसे पहली बात ही डिक्लेरेशन है, उसके बाद उस पर जम जाना है। ये नहीं कि हालात ऐसे हुए तो वैसे हो गए, हालात अच्छे हो गए तो फिर अच्छे हो गए, ये नहीं कि जरा जरा सी चीज हमें हिला के रख रही है। अब कोई जॉब के ऊपर किसी ने कुछ कह दिया तो अब अगले दिन हमने कहा नहीं अब पता ना चले, अब देखे ना मुझे जॉब पे बड़ी मुश्किल हो रही है तो इसलिए ये मैं अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को छुपाती हूँ, फिर मैं मुझे ना मैंने ऐसा नाम रखना है ना बच्चों के हम ऐसे नाम रखे, क्योंकि अगर कोई सोसाइटी में रहना है तो ऐसे ही नाम होने चाहिए पता ही ना चले कि मुसलमान है। मोहम्मद अहमद तो नाम बिल्कुल ही ना रखो, ऐसे नाम रखो कि जो यानी इनके अगर ब्लेंड इन हो जाए तो किसी को नाम लेते हुए भी नहीं समझ आएगी कि ये मुसलमान है। ये फिर क्या इस्तकामत है बताएं। आज ठीक है, हम मानती हूँ कि मुसलमानों के हालात दुनिया में थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से इसलिए कह रही हूँ कि अगर मक्की दौर से आप कंपेयर करें तो शर्म आती है कहते हुए कि हमें कोई मुश्किल है, शर्म आती है ना कि क्या उनके ऊपर हालात गुजरे और हम किन बातों की फरियाद कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया, अच्छा जी उसने मेरे से पुलिस वाले ने रोका तो उसने मेरे से आईडी मांग लिया, मुझे डिस्क्रिमिनेशन हुई क्योंकि मैं मुसलमान हूँ ना, मैं फलाने स्टोर पे गई थी डिस्क्रिमिनेशन हो गई मेरे से, और मैं फलानी जगह पे गई थी तो कुछ लोगों ने ना कोई बातें बोल दी, कोई कमेंट्स दे दिए मेरे ऊपर, ये हमारी मुश्किलात। इनको मुश्किलात कहते हुए भी शर्म नहीं आती हमें, देखे कि सहाबा के साथ क्या हुआ फिर देखे कि हम किस चीज को कह रहे हैं। आपको पता है कि कई लोगों ने इसी मुल्क में कितनी मुश्किलात काटी, जैसे जो काले लोग हैं इनको इसी मुल्क में उनके साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई, आप ब्लैक हिस्ट्री निकाल के देख ले, यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया था, जापानियों के साथ वर्ल्ड वॉर टू के बाद में उस वक्त इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया था विद फैमिलीज, तो लोगों ने सही है ना मजालिम आज तक, लेकिन किसी ने अपने रंग की वजह से सहा, किसी ने अपने मुल्क की वजह से, किसी अपने खास मुल्क के होने की वजह से कहा सहे ये बातें, किसी ने अपने मजहब की वजह से सही, क्या मुसलमान अपने दीन की वजह से सह नहीं सकता, क्या मुसलमान अपने दीन की वजह से कोई बात नहीं सुन सकता आज। तो इस्तकामत ये अल्लाह को चाहिए और इसका इम्तिहान है कि इस्तकामत किस में है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बैठ के तस्बीहां कर लेना ना ये बहुत आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जिंदगी में शो करना मुश्किल है कि दिखाओ कि तुम एक कलमा पढ़ने वाले हो। ये अल्लाह को नहीं चाहिए कि हमने अपने घरों के अंदर तो आयतें और सूरतें जो है ना वो दीवारों पे लगा ली, ये नहीं मैं कह रही गलत है, लेकिन बस वो लगा ली गाड़ी के अंदर, हमने एक सफर की दुआ लगा ली है और हम एक साल में एक एक दफा कोई कुरान अपने घर में दर्श करा लेते हैं या कुछ है, चलो जी हम बहुत अच्छे मुसलमान हो गए, ये नहीं चाहिए। ये चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर दिन और रात में तुम मुसलमान बन के दिखाओ, तुम्हारा कहीं नुकसान हो रहा है किसी जगह पे, तुम्हारा कोई अंदेशा है कि यहाँ पे नुकसान हो जाएगा तुम्हें, तब भी तुम अपना नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन ये अपने ईमान का सौदा ना करो कि कोई बात नहीं अल्लाह ने जो कम दिया उसका तो खैर है, कोई बात नहीं बाद में तौबा कर लेगी, ये बस मेरा नुकसान ना हो जाए। लोगों का इस्तकामत का पता ही कब चलता है, जब रुकावटें आती हैं, जब दुनिया की ख्वाहिशात आगे होती हैं, दुनिया के फायदे आगे आते हैं, किसी नुकसान का अंदेशा होता है, या फिर खुशियों और गमों में पता चलता है कि ये कितना इस्तकामत रखने वाला है कि मैं खुशी के मौके पे आपे से बाहर तो नहीं निकल जाती, या मैं वाकई मैं नजर आ रही होती हूँ रब्बुनल्लाह। गम के मौके पर क्या होता है, तो कितनी दफा हम यहाँ पे आके ही मार खा जाते हैं, डंडी मार देते हैं। अगर हम इन वक्तों में जो के हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, उनमें नहीं हम साबित कर सकते, तो और किस वक्त साबित करना है? उस वक्त बाकी तो जिंदगी ऐसे स्ट्रेट चल रही है तो चलती रहेगी। तो असल मसला ये कहना कि बस मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया या रब्बुन अल्लाह, ये बात नहीं है। असल मसला ये है कि जम के दिखाया या नहीं, जम के दिखाओ। ठोकरें खानी पड़े खा लो, ताने सुनने पड़े सुन लो, लोग हंसते हैं हंसने दो उनको। किसी ने कहा मैं तो ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ किसी जगह पे, किसी स्टोर में, तो मैं वो क्या ये मेकअप करती हूँ, तो मेरे से वो गैर मुस्लिम औरतें मेकअप नहीं कराती मेरा शायद हिजाब देख के, तो मैं अब हिजाब उतार सकती हूँ इस बात की वजह से, क्योंकि देखिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये तो हमारे हाल है इस्तकामत के, जरा जरा सी बात पे हम डर जाते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं होता, हम पहले ही सहम में बैठे होते हैं, हम पहले ही छोड़ने को तैयार है बैठे हुए कि हम किस वक्त बस छोड़ दें। सोचिए हमारी ग्रिप कितनी लूज है कि हम बस दूर है ना, अभी कोई चीज भी दूर तो हम वहां की चीजें सुन के भी कहते हैं आजकल हालात वैसे बड़े खराब है, वैसे इस तरह से आजकल नहीं ये चल सकता, ये सब आराम छोड़ के बैठ जाते हैं सब कुछ। तो ये नहीं अल्लाह को चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कोई ईमान नहीं है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। सारी अपनी जिंदगी, अपना अपने दिन और रात, अपनी खुशियों और गम, अपने हर तरह के उसके अंदर मुसलमान बन के दिखाओ। तबे सकामत, जब तुम ये बन जाओगे ना, जब तुम ये कर लोगे, और मैंने आपको क्या बताया इस्तकामत की रुकावटें ये है, इस्तकामत पे कायम रखने वाली चीज कौन सी है? सबसे पहले दुआ किया करें, अल्लाह इस्तकामत देना, दीन पे इस्तकामत देना, नेकियों में इस्तकामत देना, अपनी इताअत पे इस्तकामत देना, मरते दम तक यानी इस पे रखना। और कुरान ये इस्तकामत देता है, इंसान को हिलने नहीं देता। आप देखते हैं एक दफा आप सुनते हैं तो फिर उसके बाद कुछ सीधी होने शुरू हो जाती है हमारी सोच भी और अमल भी, फिर उसके बाद एक हफ्ता ही गुजरता है तो हमारा असर खत्म होने लगता है। आप सोच लें अगर गैप आ जाए, हम सोचे बस ठीक है हमने पढ़ लिया, और वही जैसे मैंने आपको उबाल की मिसाल दी, उबाल आ रहा है अभी तो वह जोश है, अभी आपने एक खास टेम्परेचर पे रखा है वो बॉयल होता जा रहा है, लेकिन अगर आग बंद कर दी तो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। इसको नहीं छोड़ना, ये अल्लाह की रस्सी है, ये इस्तकामत देगी। तो सुम इस्तकामु फिर क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइकातु, उतरते हैं उन पर फरिश्ते। कब उतरते हैं ये फरिश्ते? मुफस्सिरीन कहते हैं तीन औकात में उतरते हैं इनके ऊपर फरिश्ते। तीन औकात कौन से? मौत के वक्त, अभी मरा नहीं है लेकिन बिस्तरे मर्ग पे उस वक्त, नंबर टू कब्र में, और नंबर थ्री जब हशर में उठता है उस वक्त उसके ऊपर फरिश्ते उतरते। ततनज्जलु में, ततनज्जलु है, तनज्जलु नहीं है, है ना, ततनज्जलु में जब आ रही एक तकरार सी आ रही है ना, माना भी इसी तरह, यानी पैदर पे उतरते हैं, जब जब जरूरत होगी उतरते हैं, उतरते ही जाते हैं। आप सोचें अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें ऐसी मौत देना कि जो जब हमारे हम भी दुनिया से जाने लगे तो हमारे पर फरिश्ते उतरें। आप इस जिंदगी के अंदर तो नहीं देख सकते, लेकिन मरने वाला जिस वक्त बिस्तरे मर्ग पे होता है उस वक्त उसके घर वाले करीब खड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और घर वाले रो रहे हैं और सब एक गम में, और उसको पता चल गया कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया, अब नहीं मैंने बचना, अब बस, और अगली मंजिलें उसको नजर आने शुरू हो गई, उसको महसूस हो रहा है कि दिस इज माय लास्ट टाइम। उस वक्त सोचें कि उसके ऊपर क्या हालत होगी ना, कि ये जाहिर है खौफ तो होगा ना, जितने मर्जी इंसान नेकियां कर ले। आप सोचें बच्चे कभी अपने एग्जाम करके आते हैं ना, तो फिर उनसे पूछे कि टेस्ट कैसा हुआ, तो कहते हैं आई थिंक आई डिड गुड बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया लेकिन मुझे नहीं पता, ये बच्चे कहते हैं। अब देखिए एक बंदा जितनी भी नेकियां कर ले, हर सर्टेनिटी तो किसी के पास नहीं ना, 100% ना मैं ना आप, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कह सकता नहीं जी हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारा तो सब वहां पे ठीक था। अब उसको खौफ होगा, अरे अब पता नहीं मेरा क्या बनता है, अब क्या होगा, अब तो मैं जाने लगी हूँ, अब क्या होने लगा। अब देखिए ये छोटी छोटी चीजों पे हमें हो जाता है कि हम एयरपोर्ट पे उतरने लगे, हाय अब पता नहीं क्या होगा, अब इमिग्रेशन वाले रोक ना ले, अब ऐसे ना हो जाए, छोटी छोटी चीजों पे हम कितने पैनिक हो जाते हैं। और वो कि भाई अब तो मैं दुनिया से ही जाने लगी हूँ, सोचे वो वक्त कितना ज्यादा खौफ का होगा। उस वक्त एकदम वो देखता है तो फरिश्ते आ रहे हैं, और फरिश्ते आ रहे हैं और इतने खूबसूरत लिबास में, खूबसूरत चेहरों वाले हैं। जैसे नसाई की हदीस है ना कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं सफेद रंग के रेशम के साथ, और फिर वो आके क्या कहते हैं, ए जान तू निकल जा, अपने रब की रजा की तरफ चल, तेरा रब तुझसे राजी और तुझे राजी कर देने वाला है, तू निकल उस रब की तरफ जो तेरे साथ नाराज नहीं है, तुझसे राजी है। अब देखें जो जिसको ऐसी बात पता चल गई, निकल अपने रब की रहमत की तरफ, निकल अपने रब के इकराम की तरफ, जिसको ये तसल्लियां मिल जाए वो तो फिर उसकी तो क्या वो होगी, उसको तो ये नहीं रहेगा कि कौन रो रहा है और कौन क्या है, वो तो कहेगा मुझे बस ले चलो फिर तसल्ली मिल गई, आगे तो मेरा बड़ा अच्छा है सारा कुछ, अच्छा अल्लाह मेरे से राजी है। वाकई जिसको राजी करने के लिए उसने मेहनत की हो, जिसने जिंदगी भर मेहनत की हो कि मेरा रब राजी हो जाए, उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहनी, वो तो कहेगा मुझे मकसद मिल गया, वो तो कहेगा इसी के लिए तो तड़पता था, न्यूज मिल गई, खुशखबरी मिल गई, रब राजी है तुझसे, अब क्या गम बाकी, अब उसको कोई फिक्र रह जाएगी। आप सोचें कि वो तो उसके लिए तो जिंदगी का खुश तरीन दिन होगा, वो उसकी खुशी की इंतहा आप सोच सकते हैं कितनी खुशी होगी उसको उस वक्त, कि जब उसको ये खुशखबरी, अभी वो मरा नहीं है, अभी उसको ये खुशखबरी मिल गई, यानी उसकी मौत के टाइम शुरू हो गया, उसका उसका रूह निकालने लगे हैं, मौत का वक्त है, अभी वो बता नहीं सकता घर वालों को कुछ भी, लेकिन कैसा वो मुस्कुरा देगा। आप देखते हैं बहुत दफा ऐसे होता है, ये नहीं कि कोई अगर नहीं हुआ तो किसी का बुरा है, ये नहीं है मैं कह रही, लेकिन बाज लोगों को देखा वो फौत होते हैं ना तो उनकी शक्ल पे मुस्कुराहट होती है, उन्होंने क्या देखा कि वो मुस्कुरा रहे हैं, क्या चीज उनको नजर आ गई, क्या उनको कौन सी ऐसी खुशखबरी मिल गई, तो हम अज्यूम करते हैं कि यही होंगी जिससे वो इतने खुश हो गए, जो रब्बुल्लाह कहता है फिर उस पे बस जम जाता है, तो अल्लाह ताला उसकी क्या कदरदानी करते हैं, क्या कदरदानी करते हैं कि वो वक्त जब उसका सबसे मुश्किल वक्त है। देखिए इस पूरी जिंदगी के सारे गम जमा कर लो, सब तकलीफें जमा कर दो, मौत की तकलीफ से ज्यादा बढ़ के नहीं है, मौत की तकलीफ उन सबसे ज्यादा है, लेकिन मौत की तकलीफ अपनी जगह है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देख के फिर मुझे ये पहले, यानी वो समझती थी कि नेक लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देखी बिस्तर मर्ग पे तो कहती ये मेरा गुमान खत्म हो गया, ये जो यानी एक गलत फहमी थी ये दूर हो गई, मौत की अपनी तकलीफ है और मौत की तकलीफ बरहक है, लेकिन जिस वक्त एक खुशी मिल गई ना इस बात की तो अब परवाह नहीं रही, अब बस ये है कि अच्छा ठीक है जो भी अब होता है बस इससे गुजर जाऊंगा। जैसे कि किसी का बच्चा पैदा हो रहा है, उस औरत को कितनी तकलीफ होती है, बच्चे को देखते ही कैसे उसकी खुशी हो जाती, कोई तकलीफ उसको याद ही नहीं रहती कि मैं तो अभी इतनी चीखें मार रही थी। तो वो देखिए उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, वो फिर क्या कहते हैं फरिश्ते उनको, अल्लाह तखाफू वला तहज़न,